पिछले अंक में हमने बात की थी कि जब लोगों ने गांधी जी से मधुशाला की शिकायत की तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और बात की थी मधुशाला में धर्म, जाति और सामाजिक असमानताओं के बारे में कुछ कविताओं की। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मर्सिया की। पहली कविता है, हरा भरा रहता मदिरालय जग पर पड़ जाए पाला, हरा भरा रहता मदिरालय जग पर पड़ जाए पाला, वहां मुहर्रम का तमछाए यहां होलिका की ज्वाला। यहां कवि कहते हैं कि दुनिया में चाहे जो होता रहे, आपके मन की जो मधुशाला है, जो वो अवस्था है जहां पर आप खुश रहना सीख जाते हैं, वहां हमेशा होलिका की ज्वाला जलती रहेगी, वहां मुहर्रम का तम नहीं होगा, वहां दुख नहीं होंगे, सुख ही सुख होगा। हरा भरा रहता मदिरालय जग पर पड़ जाए पाला, वहां मुहर्रम का तम छाए यहां होलिका की ज्वाला। स्वर्ग लोक से सीधी उतरी वसुधा पर दुख क्या जाने, स्वर्ग लोक से सीधी उतरी वसुधा पर दुख क्या जाने, पढ़े मर्सिया दुनिया सारी ईद मनाती मधुशाला, पढ़े मर्सिया दुनिया सारी ईद मनाती मधुशाला। मधुशाला उस अवस्था की तरह है जो जमीनी उलझनों से ऊपर उठ चुकी है, जैसे स्वर्ग होता है जहां सब कुछ ही सुखमय होता है, सब स्वस्थ होता है, जहां चाय कॉफी की निरंतर बारिश होती है, या जैसे कहें निर्वाण की अवस्था। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात भी है आजकल के दिनों में तो और ज्यादा प्रासंगिक या रिलेवेंट, जब कोविड महामारी के कारण हर ओर सिर्फ उदासी, अवसाद और निराशा भरी खबरें आ रही हैं, तब तो मानसिक पॉजिटिविटी की और जरूरत है। जैसे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव एनर्जी। अब वो निर्णय हमें लेना है कि हम क्या लेना चाहते हैं, कोविड नेगेटिव, एटीट्यूड पॉजिटिव। यहां एक शब्द है मर्सिया, पढ़े मर्सिया दुनिया सारी ईद मनाती मधुशाला। मर्सिया क्या होता है? मर्सिया एक तरह की शोक कविता है, इंग्लिश में कहें तो एलजी। मर्सिया को मुहर्रम के अवसर पर पढ़ा जाता है, और इसके इतिहास की थोड़ी सी बात करें तो कर्बला की लड़ाई के शहीदों के सम्मान में और उन्हें याद करने के लिए मर्सिया पढ़ा जाता है। मर्सिया एक अरेबिक शब्द मर्थिया से आया है, जिसका अर्थ होता है एक ग्रेट ट्रेजेडी या किसी की मृत्यु पर गहरा शोक। मर्थिया थोड़ा संस्कृत हिंदी के मृत्यु शब्द से भी मिलता जुलता है। कहते हैं कि कर्बला की लड़ाई में हुसैन इब्न अली और उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था, और तभी से उनकी मृत्यु का शोक एक रैलिंग वॉर क्राई जैसा बन गया था, जो युद्ध की घोषणा होती है, और उसी घटना को अब मुहर्रम के रूप में याद किया जाता है। मुहर्रम वो इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना भी होता है, और हुसैन इब्न अली की शहादत मुहर्रम के 10वें दिन हुई थी। मर्सिया के बारे में कहा जाता है कि इसका अर्थ ना भी समझ आए तो इसकी लय सुनके ही माहौल में एक उदासी सी छा जाती है। बच्चन जी ने भी एक कविता लिखी है जो मर्सिया की लय और धुन पर है। कविता का शीर्षक है सूत की माला, जो कि उन्होंने गांधी की हत्या के तुरंत बाद लिखी थी। और गांधी जी का किस्सा हमने पिछले अंक में सुनाया था कि उनकी मधुशाला पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी, वो अवश्य सुनिएगा। अगली कविता पर चलते हैं। और रसों में स्वाद तभी तक, और रसों में स्वाद तभी तक दूर जब ही तक है हाला। यहां कवि कहते हैं कि कई बातों में स्वाद तभी तक आता है जब वो दूर होती हैं। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। जब चीजें पास आ जाती हैं तो उनकी वैल्यू या उनका मूल्य वो कम हो जाता है या कई बार खत्म ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़े नाच, अदा, नखरे, ये सब प्रेम में बहुत आवश्यक हैं। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण और गोपियों का प्रेम है, कृष्ण और उनकी माँ यशोदा का प्रेम है। वहाँ शिकायत भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ एक बार में नहीं मिल जाता। वहाँ बंधन में मुक्ति है और मुक्ति में बंधन है। इस बारे में एक बहुत सुंदर सी कविता है धर्मवीर भारती की लिखी हुई, कनुप्रिया, उसको अवश्य पढ़ें। और रसों में स्वाद तभी तक दूर जभी तक है हाला, इतरा लें सब पात्र न जब तक आगे आता है प्याला, इतरा लें सब पात्र न जब तक आगे आता है प्याला। कर लें पूजा शेख पुजारी तब तक मस्जिद मंदिर में, कर लें पूजा शेख पुजारी तब तक मंदिर मस्जिद में, घूंघट का पट खोल न जब तक झांक रही है मधुशाला, घूंघट का पट खोल न जब तक झांक रही है मधुशाला। फिर से अलंकार से अलंकृत एक संगीतमय सी पंक्ति है यहाँ, घूंघट का पट खोल न जब तक झांक रही है मधुशाला। भावार्थ, कवि कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में पूजा वूजा जो करनी है कर लें, लेकिन मंजिल तो एक मधुशाला ही है, यानी मन की शांति, और असली सुख तभी होगा जब उसके घूंघट के पट खुल जाएंगे। और दूसरी बात, इतराना या भेदभाव वो तभी तक है जब तक आपको एक मधुशाला जैसा मुकाम ना मिल जाए। इसी बात को दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जैसा हमने पहले कहा कि कई दफा चीजें तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वो मिल ना जाए। एक बार मिल गई तो रस खत्म, वैल्यू खत्म, और रसों में स्वाद तभी तक दूर जभी तक है हाला। हिमांशु वाजपेयी की एक बड़ी अच्छी किताब है किस्सा किस्सा लखनऊआ, उसमें एक कहानी है सलीम भाई सब्जी वालों की। हिमांशु वाजपेयी कहते हैं, बिल्लौचपुरे में सलीम भाई की एक छोटी सी सब्जी की दुकान है। सलीम भाई की शख्सियत और उनकी गुफ्तगू का जादू ये है कि पिछले कुछ सालों में जो लोग बिल्लौचपुरे और आसपास के इलाकों से हिजरत करके नए लखनऊ में बस चुके हैं, वो भी हफ्ते 15 दिन या एक महीने में एक बार सलीम भाई की दुकान पर खींचे चले आते हैं। इनमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। मुसलमान ओ हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनकी सब्जी, एक मगर उनका खाना। सब्जी खरीदना तो बहाना है, मकसद तो मिलना जुलना और सलीम भाई की सोहबत से लुत्फंदोज होना है। लखनऊ हमेशा से सुखन साजों यानी बात बनाने वालों का मक्का रहा है। प्रोफेसर नदीम हसनैन ने अपनी किताब द अदर लखनऊ में सलीम भाई जैसे एक सुखनसाज खीरे वाले का किस्सा सुनाया है। कुछ साल पहले की बात है, एक आदमी ठेले पर खीरे बेच रहा था, खीरे यानी कुकुम्बर। तब खीरे का मौसम बस शुरू ही हुआ था और इस आदमी के पास छोटे छोटे पतले पतले ताज़ा खीरे थे, बिल्कुल वैसे जैसे लखनऊ वालों को पसंद होते हैं। नदीम साहब ने जब ये खीरे देखे तो खीरे वाले से उनका दाम पूछा। जवाब में खीरे वाले ने उन्हें सामान्य दाम से तिगुने चौगुने दाम बताए। इन्होंने उससे मोलभाव करते हुए कहा, ठीक ठीक लगा लो भाई। इस पर खीरे वाले ने लखनवी लोच के साथ कहा, हुजूर अभी अलहड़ बतिया है ना, तभी नखरे ज्यादा हैं, नखरे यानी कीमत ज्यादा है। इस पर नदीम साहब फिदा हो गए, आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। इतने खुश हुए कि जितने पैसे खीरे वाले ने मांगे थे उससे भी ज्यादा देकर उन्होंने खीरे खरीदे। इसीलिए कहते हैं कि नखरों की अपनी एक अलग कीमत होती है, द आर्ट ऑफ सिडक्शन। आज यहीं विराम लेते हैं, अगले अंक में सुनाएंगे एक कहानी बच्चन जी के जन्म से जुड़ी हुई और उनका नाम हरिवंश राय कैसे रखा गया। एक और किस्सा सुनाएंगे जब कायस्थ होने की वजह से बचपन में उनका एक बार अपमान हुआ था और इसका असर उन पर क्या पड़ा। मैं हूं अरिसुदन और ये पॉडकास्ट है मधुशाला की कहानियों की, मधुशाला से जुड़े बच्चन जी के अनुभवों की। इसको आप रिव्यू कर सकते हैं स्पॉटिफाई आईट्यून्स पर और अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं, लिंक सब यहीं दिए हुए हैं। तो मिलते हैं एक और प्याली चाय पर, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।